लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे आर्थिक याचना करते हैं कि रोबोटिक्स तथा कृत्रिम बुद्धिमता की प्रगति सदैव मानव जाति की सेवा में हो। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण विषय हैं सामायिक लोकोपकारी चर्चा, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, विश्व स्वास्थ्य असेंबली की बैठक सामान्यतः हर वर्ष मई में आयोजित होती है, लेकिन कोरोना वायरस संकट के कारण सत्र को सीमित कर दिया गया था और इसके बाद फिर से असेंबली का 73वां सत्र 9 से 14 नवंबर तक आयोजित किया गया। सम्मेलन के दौरान एक महत्वपूर्ण ब्लूप्रिंट पर सहमति बनी है, जिसकी उपेक्षा का शिकार 20 बीमारियों से निपटने के लिए रणनीति में व्यापक बदलाव सुनिश्चित किए गए। ये रोड मैप 2020 में प्रकाशित किए गए ब्लूप्रिंट का स्थान लेगा, जिसके तहत तय लक्ष्य ठोस प्रगति होने के बावजूद अभी तक हासिल नहीं किए जा सके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने विश्व स्वास्थ्य असेंबली को संबोधित कर ध्यान दिलाया कि पेरिस समझौता, टिकाऊ विकास एजेंडा सहित अन्य वैश्विक समझौतों पर प्रगति दरअसल पथभ्रष्ट राष्ट्रवाद और परस्पर सहयोग की कमी से हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
विश्व स्वास्थ्य असेंबली के सत्र में जिस नए रोड मैप पर सहमति बनी है, उसमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली ऐसी 20 बीमारियां हैं जो उपेक्षा का शिकार हैं और अक्सर निर्धन समुदायों को अपना निशाना बनाती हैं। इनमें नेत्र विकार ट्रैकोमा, याज, ड्रैकुनकुलाइसिस, डेंगी, कुष्ठ रोग, रेबीज सहित अन्य बीमारियां हैं। ऐसी 20 बीमारियों की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के लिए वैश्विक लक्ष्यों और पड़ावों को इसमें पेश किया गया है। रोडमैप में कहा गया है कि अगले एक दशक के भीतर सभी देशों में स्वास्थ्य साझेदारों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना होगा और सरकारों व समुदायों को ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी। वर्ष 2030 के लिए तय लक्ष्यों में इस बात पर जोर दिया गया है कि उपेक्षित बीमारियों का उपचार तलाश करने वाले मरीजों की संख्या में 90% तक की कटौती लाई जाए। इसके अलावा ड्रैकुनकुलाइसिस और त्वचा की बीमारी याज के उन्मूलन की पुकार लगाई गई है। असेंबली के सत्र के दौरान सदस्य देशों ने मस्तिष्क ज्वर और मिर्गी पर दो प्रस्तावों को पारित करने की भी सिफारिशें पेश की हैं। कोविड-19 महामारी के कारण मई 2020 में विश्व स्वास्थ्य असेंबली के वार्षिक सत्र को सीमित कर दिया गया था, जिसके बाद सोमवार को 73वें सत्र के शेष भाग की फिर शुरुआत हुई है। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के प्रमुख टेड्रोस एडहेनम गेब्रियसिस ने असेंबली की बैठक को संबोधित करते हुए कहा,
It's time for the world to heal from the ravages of this pandemic and the
यह समय दुनिया के लिए अपने घाव भरने का है महामारी के विध्वंस से और उन भू राजनीतिक विभाजनों से जो हमें अस्वस्थ, असुरक्षित और अन्यायपूर्ण विश्व के भविष्य के गर्त में आगे धकेल रहे हैं। महानिदेशक गेब्रियसिस के शब्द। वर्ष 2015 में टिकाऊ विकास लक्ष्यों पर 2030 एजेंडा, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता और विकास के लिए वित्तीय संसाधनों पर अदिस अबाबा एक्शन एजेंडा पर देशों की सरकारों में सहमति कायम हुई थी। इसे यूएन एजेंसी के प्रमुख ने एक बड़ी उपलब्धि बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि उसके बाद से पथभ्रष्ट राष्ट्रवाद और अलग थलग रहने की भावनाओं का उफान बढ़ा है, जिससे साझा उद्देश्यों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि पेरिस समझौते को कमजोर किया गया है और टिकाऊ विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति के बावजूद प्रयास खंडित हैं और आपसी समन्वय के बगैर हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण टिकाऊ विकास लक्ष्यों के मार्ग पर आई रुकावट 2030 एजेंडा को हासिल करने की अहमियत और उसके रास्ते में आने वाली चुनौतियों को भी दर्शाती है।
कोरोना वायरस संकट काल में सोशल मीडिया पर तस्करी के मामलों में उछाल आया है। ऑनलाइन कंपनियों के ऐसे उपयुक्त ढांचों व प्रक्रियाओं को तैयार करना होगा, जिससे इस चुनौती से निपटा जा सके और संबंधित एजेंसियों के साथ प्रासंगिक जानकारी साझा की जा सके। संयुक्त राष्ट्र की समिति ने सोशल मीडिया कंपनियों से आग्रह किया है कि महिलाओं और लड़कियों की तस्करी के अंत किए जाने के लिए बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जानी होगी। विशेषज्ञों के मुताबिक कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन माध्यमों पर पीड़ितों को तस्करी के जाल में फंसाए जाने की घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर समिति का कहना है कि दुनिया भर में महिलाएं और लड़कियां तस्करी की समस्या से सबसे ज्यादा पीड़ितों में हैं। कोविड-19 महामारी ने तस्करी में डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से निपटने की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया है। विशेषज्ञों के मुताबिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के बावजूद तस्करी में शामिल नेटवर्क अक्सर किसी सजा के डर के बगैर इसे अंजाम देते हैं। आयोग के सदस्यों ने जोर देकर कहा है कि कोरोना वायरस संकट के दौरान पीड़ितों के लिए हालात और भी ज्यादा खराब हुए हैं। हाल के महीनों में साइबर माध्यमों पर दुनिया के अनेक देशों में तस्करी के मामलों में उछाल आया है। मांग में बढ़ोतरी को सोशल मीडिया, डार्क वेब और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए पूरा किया जा रहा है। ऑनलाइन माध्यमों के जरिए संभावित पीड़ितों तक पहुंचना और अपराधियों के लिए अपनी पहचान छिपाना आसान होता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त स्वतंत्र विशेषज्ञों ने चेतावनी जारी की है कि ऑनलाइन यौन उत्पीड़न के लिए निर्बलों को शिकार बनाए जाने की आशंकाएं बढ़ी हैं। साथ ही बाल यौन दुर्व्यवहार सामग्री और बाल यौन तस्करी के मामलों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के मामले बढ़ रहे हैं। इस संबंध में यूएन विशेषज्ञों ने सिफारिशों का एक मसौदा तैयार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया और मैसेजिंग कंपनियों से आग्रह किया है कि महिलाओं व लड़कियों को तस्करी और यौन शोषण के जोखिम से बचाने के लिए जरूरी उपायों को सुनिश्चित करना होगा। उनके मुताबिक बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य औजारों से ऐसे रुझानों और गतिविधियों पर नजर रखनी होगी जिनसे तस्करी का जोखिम बढ़ता हो।
यमन में पिछले लगभग 5 वर्षों से जारी भीषण संघर्ष, बीमारियों, आर्थिक तबाही और सार्वजनिक संस्थाओं और सेवाओं के ठप हो जाने के कारण विश्व के भीषणतम मानवीय संकट के हालात बने हुए हैं। यमन में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत मार्टिन ग्रिफिथ्स ने स्थानीय लोगों की व्यथा पर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि उनकी पीड़ाओं को दूर करने के लिए शांति प्रयासों में पूरी ऊर्जा झोंकने की जरूरत है। यूएन दूत ने वीडियो लिंक के जरिए सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए हिंसा रोकने, देश को खोलने और समावेशी राजनीतिक समाधान की तलाश तेज करने की पुकार लगाई। दूसरी तरफ लीबिया वर्ष 2011 में राष्ट्रपति मुअम्मार गद्दाफी के पतन के बाद से ही अस्थिरता और आर्थिक बदहाली का शिकार रहा है। लीबिया के पूर्वी हिस्से में कथित लीबियन नेशनल आर्मी के कमांडर खलीफा हफ्तार के वफादार सैनिकों और त्रिपोली में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार के सुरक्षा बलों के बीच जिनेवा में युद्ध विराम का समझौता हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC की मुख्य अभियोजक फतू बेन सूडा ने लीबिया में युद्धरत पक्षों से उस ऐतिहासिक युद्ध विराम समझौते को लागू करने का आग्रह किया है। ज्यादा जानकारी के साथ महबूब खान।
यमन में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत मार्टिन ग्रिफिथ्स ने स्थानीय लोगों की व्यथा पर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा है कि उनकी पीड़ाओं को दूर करने के लिए शांति प्रयासों में पूरी ऊर्जा झोंके जाने की जरूरत है। मार्टिन ग्रिफिथ्स ने कहा कि पहले की अपेक्षा अब शांति है, लेकिन अफवाहें फैल रही हैं कि लड़ाई जल्द ही फिर भड़क सकती है और फिर से देश भर में व्यापक पैमाने पर हिंसा का कारण बन सकती है। विशेष दूत ने सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों को बताया कि कई महीनों से वो वर्चुअल रूप से साझा घोषणा पत्र के मसौदे को तैयार करने के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं और आवश्यकता अनुसार विभिन्न पक्षों से मुलाकातें कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों पक्षों को अब समझौते पर पहुंचना होगा और उनके नेतृत्व द्वारा गंभीर और सोच समझकर लिए गए संकल्पों के जरिए ही इस संघर्ष का अंत किया जा सकता है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC की मुख्य अभियोजक फतू बेन सूडा ने लीबिया में युद्धरत पक्षों से उस ऐतिहासिक युद्ध विराम समझौते को लागू करने का आग्रह किया है जिस पर हाल ही में सहमति बनी है। ICC अभियोजक ने कहा कि शांति की प्रतीक्षा कर रही लीबियाई जनता के लिए यह समझौता एक ठोस प्रगति को दर्शाता है और स्वागत योग्य है। फतू बेन सूडा ने अपनी ये अपील मंगलवार को सुरक्षा परिषद को मौजूदा हालात से अवगत कराते हुए जारी की। ICC अभियोजक ने कहा कि लीबिया में अत्याचार के पीड़ितों को यह भरोसा दिलाया जाना होगा कि युद्ध विराम या किसी भावी समझौते के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में हुए अपराधों के गंभीर मामलों के दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा और आरोपों का सामना करने के लिए उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र संघ रेडियो द्वारा लिए गए थे। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
सदा शांति दे दे हे शांति दाता, हमें ज्योति दे दे हे ज्योति दाता। सदा शांति दे दे हे शांति दाता, हमें ज्योति दे दे हे ज्योति दाता, हे ज्योति दाता।
आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने शुक्रवार को विश्व बाल दिवस पर विश्व का आह्वान किया कि वह प्रत्येक बच्चे को स्वागत, सुरक्षा, सहायता और विकास का हर संभव मौका देने के लिए प्रयास करे। शुक्रवार 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस के अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने अपने ट्वीट संदेश में लिखा, प्रत्येक बच्चे के लिए यह जरूरी है कि माता के गर्भ में पलने के प्रथम क्षण से ही उसका स्वागत किया जाए, उसे सुरक्षा प्रदान की जाए, उसे सहायता मिले और संरक्षण मिलता रहे। वेटिकन ने 21 नवंबर को पड़ने वाले विश्व मत्स्य दिवस के उपलक्ष्य में जारी एक संदेश की प्रकाशना की, जिसमें कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में मछुओं और मत्स्य व्यापार में लगे लोगों की कठिनाइयों पर ध्यान आकर्षित कराया गया है। समुद्र और समुद्री तटों पर काम करने वाले तथा मछली व्यापार और श्रम से जुड़े लोगों को समर्थन देने के लिए प्रतिवर्ष 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। मत्स्य व्यापार विश्व के 5,95,00,000 लोगों की आमदनी का स्रोत है। इनमें से 85% लोग श्रमिक हैं। अखंड मानव विकास संबंधी परम धर्म पीठीय समिति के अध्यक्ष कार्डिनल पीटर टर्कसन द्वारा हस्ताक्षरित संदेश में इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया कि इस वर्ष महामारी की वजह से लाखों मछुओं और संपूर्ण मत्स्य उद्योग पर गंभीर आर्थिक प्रभाव पड़े हैं। संदेश में कहा गया कि सामाजिक दूरी ने केवल मत्स्य उद्योग पर ही नहीं बल्कि इससे जुड़े होटल और रेस्तरां उद्योग पर भी प्रहार किया है तथा कई मजदूरों से उनकी मजदूरी छीनी है। कार्डिनल महोदय ने इस विषय के प्रति ध्यान आकर्षित कराया कि मत्स्य व्यापार से जुड़े श्रमिकों की मजदूरी चले जाने से कई परिवार निर्धन से निर्धनतम हो गए हैं तथा प्राथमिक आवश्यकताओं की नितांत कमी बनी हुई है। इनकी मदद के लिए उन्होंने एकात्मता का आह्वान किया, इसलिए कि दैनिक आहार की कमी इन्हें मानव तस्करी और अपराध संगठनों का शिकार बना सकती है। संत पापा फ्रांसिस ने लातिनी अमरीकी कलीसिया का आह्वान किया है कि कोविड-19 महामारी का सामना करते समय वह एकात्मता को प्रोत्साहन प्रदान करे। लैटिन अमरीका, कलीसिया, संत पापा फ्रांसिस और महामारी का परिदृश्य शीर्षक से सामाजिक विज्ञान संबंधी परम धर्म पीठीय अकादमी तथा लातिनी अमरीकी कैथलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन द्वारा 19 और 20 नवंबर को जारी एक ऑनलाइन शिविर को भेजे गए वीडियो संदेश में संत पापा ने एकात्मता का आह्वान किया। गुरुवार को प्रकाशित अपने वीडियो संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने आशा व्यक्त की कि यह शिविर लोगों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए और विशेष रूप से हाशिए पर जीवन यापन करने वालों के लिए प्रतिष्ठापूर्ण जीवन की गारंटी देने के लिए काम करे। उन्होंने कहा, कोविड-19 महामारी ने पहले से कहीं अधिक समस्याओं और सामाजिक आर्थिक अन्याय को उजागर किया है, जिससे लैटिन अमरीका के लोग पीड़ित रहे हैं। यह महामारी निर्धनों पर और भी अधिक दबाव डाल रही है। संत पापा फ्रांसिस ने उन कठिन परिस्थितियों पर चिंता व्यक्त की जिनका सामना कई परिवारों को करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि महामारी के चलते ये समस्याएं और अधिक बोझल हो उठी हैं। विशेष रूप से आवास, स्वच्छ जल और स्वास्थ्य सेवाओं की नितांत कमी बनी हुई है। संत पापा ने कहा, इस समय मैं उन भाइयों और बहनों के बारे में सोच रहा हूं जो महामारी के प्रभाव को सहन करने के अलावा दुख के साथ देख रहे हैं कि उनके आसपास का पारिस्थितिकी तंत्र जंगल की आग के कारण गंभीर खतरे में है, जो लातिन अमेरिका के फेफड़े कहे जाने वाले अमेज़न वर्षा वनों के विशाल क्षेत्रों को नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि महामारी के दुष्प्रभाव विशेष रूप से अर्थव्यवस्थाओं पर बहुत दिनों बाद भी देखे जा सकेंगे। अस्तु, उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विचार विमर्श करने वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी को उनका दैनिक आहार मिले। उन्होंने कहा, समाज का संगठन योगदान, साझाकरण और वितरण पर आधारित है, कब्जे, बहिष्कार और संचय पर नहीं। वैटिकन के राज्य सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन ने कहा है कि विश्व के विभिन्न भागों में नित्य बढ़ती यहूदी विरोधी धारणा के उन्मूलन के लिए अंतर धर्म संवाद की नितांत आवश्यकता है। रोम स्थित परम धर्म पीठ के लिए अमरीकी राजदूतावास ने गुरुवार को विश्व में बढ़ती यहूदी विरोधी धारणाओं को दूर करने के लक्ष्य से एक ऑनलाइन विचार गोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन ने अपने विचार व्यक्त किए। विचार गोष्ठी का उद्घाटन करते हुए अमरीकी राजदूत कलिस्ता जिनक्रिक ने हाल के वर्षों में यहूदियों, उनके सभागृहों और कब्रिस्तानों पर हमलों का स्मरण दिलाया और कहा कि इस प्रवृत्ति को उलटने में हर स्वतंत्र समाज की हिस्सेदारी होनी चाहिए। इस दिशा में उन्होंने संत पापा फ्रांसिस के प्रति आभार व्यक्त किया। जनवरी में की गई संत पापा की टिप्पणी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि संत पापा फ्रांसिस यहूदी विरोधी वाद और सर्वनाश के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, जिन्होंने यहूदी नरसंहार की स्मृति को जिंदा रखने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन ने विचार गोष्ठी के समापन पर संत पापा फ्रांसिस के शब्दों को प्रतिध्वनित करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार का यहूदी विरोधी वाद हमारे ख्रिस्तीय मूल का बहिष्करण है। उन्होंने कहा कि संत पापा फ्रांसिस का विश्व पत्र फ्रतेल्ली तूती आधारभूत संकल्पनाओं जैसे लोकतंत्र, स्वतंत्रता, उदासीनता पर चिंतन व्यक्त करने के साथ साथ इतिहास की भावना के अर्थ की हानि और नस्लवाद जैसी मौलिक अवधारणाओं की विकृतियों पर चिंतन प्रस्तुत करता है, जो कि यहूदी विरोधीवाद में भी परिलक्षित होती हैं। उन्होंने कहा कि यहूदी विरोधी धारणाओं का सामना करने के लिए अंतर धर्म संवाद एक शक्तिशाली अस्त्र है, क्योंकि भ्रातृत्व की नींव विभिन्न धर्मों में व्याप्त सत्य पर ही मजबूत होती है। वैटिकन स्थित जीवन संबंधी परम धर्म पीठी अकादमी के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष विंचेंसो पालिया ने बुधवार को एक ऑनलाइन मंच में पति पत्नी के बीच प्रेम और प्रजनन तकनीकियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जीवन का प्रसारण एक उपहार है जिसका संरक्षण मनुष्य का दायित्व है। स्वास्थ्य संबंधी विश्व नवाचार संगठन WISH द्वारा उक्त मंच का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रजनन की नवीन तकनीकियों और इनसे जुड़े नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। महाधर्माध्यक्ष पालिया ने जीवन के संचरण से संबंधित कैथोलिक धर्म की महत्वपूर्ण स्थिति को रेखांकित किया, इसलिए कि इसे उन कारकों के संबंध में समझा जाना चाहिए जो यौन गतिविधि, पति पत्नी और पीढ़ी के बीच प्रेम को एकीकृत करते हैं। उन्होंने कहा कि कैथोलिक परंपरा इस एकता को मूलभूत मानव शास्त्रीय सत्य मानती है जो सभी संस्कृतियों में व्याप्त है। अस्तु, पति पत्नी और दंपतियों के बीच प्रेम एवं पीढ़ियों के बीच का बंधन एक कर्तव्य से अधिक उपहार है और हमसे सुरक्षा का आह्वान करता है। उन्होंने कहा कि हर तरह से मानव जीवन और भ्रातृ एकजुटता का समर्थन किया जाना चाहिए, इसलिए कि यह दाम्पत्य जीवन और परिवार की फलदायी अभिव्यक्ति है। इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।